श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को फोन करके बधाई दी, साथ ही कहा दोनों के बीच हथियारों की दौड़ नाजुक मोड़ पर।
The arms race which is getting out of control, but we will never allow anybody to have anything.
राम राज्य रथ यात्रा का तमिलनाडु में जोरदार विरोध।
उन्होंने बोला कि जब ये राम राज्य का जो ये जो मामला है, जब ये सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या का मामला अभी भी पेंडिंग है, तो इस समय आप यहाँ पे रथ यात्रा को आप अलाउ नहीं कर सकते, यहाँ पे सही नहीं रहेगा।
मुर्गे की एक प्रजाति पर दो राज्यों में विवाद।
अभी पूरे देश में मुझे लगता है झाबुआ से कम 40 से 50 हजार प्रतिवर्ष पहुंचा रहे हैं। पिछले करीब 4 से 5 साल पहले वो यहीं से करीब 1000 चूजे लेके गए हैं।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश उप्रेती से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को उनके रूस का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में बहुत जल्द वो पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान वो दोनों देशों के बीच हथियारों की होड़ खत्म करने और यूक्रेन, सीरिया और उत्तर कोरिया के हालात पर भी चर्चा करेंगे। ब्रिटेन की कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी अलेक्जेंडर निक्स को निलंबित कर दिया है। कैम्ब्रिज एनालिटिका पर राजनीतिक फायदे के लिए फेसबुक यूजर्स की जानकारियां चुराने का आरोप है। ब्रिटेन में चैनल 4 न्यूज की एक खुफिया रिकॉर्डिंग में निक्स को यह कहते हुए दिखाया गया है कि उनकी कंपनी ने 2016 के अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में 3 राज्यों में ट्रंप की जीत में मदद की। चैनल 4 की इस रिकॉर्डिंग में एक अज्ञात शख्स पूछता है कि क्या आप ट्रंप से मिले थे, जिस पर अलेक्जेंडर निक्स का जवाब था, कई बार। हमने पूरी रिसर्च की, डेटा खंगाले और पूरा डिजिटल चुनाव अभियान चलाया। हमारे डेटा में सारी रणनीतिक सूचनाएं थीं। खुफिया रिकॉर्डिंग में ये थे अलेक्जेंडर निक्स, जिन्हें कैम्ब्रिज एनालिटिका ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद से निलंबित कर दिया है। फेसबुक ने कहा है कि यूजर्स की निजी जानकारियां चुराए जाने की खबरों से पूरी कंपनी बुरी तरह विचलित है और खुद को ठगा महसूस कर रही है। कंपनी ने कहा है कि उनके प्रतिनिधि आज अमेरिकी संसद में इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे और उन सवालों का जवाब देंगे जो वे कैम्ब्रिज एनालिटिका की गतिविधियों के बारे में जानते हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिकी सांसदों ने उस प्रस्ताव को रोक दिया है जो यमन में चल रहे गृहयुद्ध में अमेरिकी दखल को खत्म करने के लिए लाया जा रहा था। ये प्रस्ताव ऐसे समय में रोका गया है जब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को अच्छा दोस्त बताया। उन्होंने कहा, हमारे बीच बहुत अच्छी दोस्ती है और बेहतर संबंध है। मुझे कहना पड़ेगा कि ये रिश्ते ओबामा प्रशासन के दौरान बहुत तनावपूर्ण थे। अब दोनों देशों के बीच दोस्ती अपने सर्वश्रेष्ठ दौर में है। सऊदी अरब ने हमारे देश में बहुत निवेश किया है, इसका मतलब है हमारे नागरिकों को काम मिलेगा और नौकरियां मिलेंगी। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। सीरिया की राजधानी दमिश्क के बाजार में एक रॉकेट हमले में 35 लोग मारे गए हैं। सीरिया की सरकारी मीडिया ने इस हमले की जानकारी दी है। उधर सीरिया में कार्यरत मानवाधिकार समूह का कहना है कि विद्रोहियों के कब्जे वाले गूटा में हाल ही में हुए हवाई हमलों में भी तकरीबन इतने ही लोग मारे गए थे। अमेरिका में ईरान के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उस पर प्रतिबंधित ईरानी कंपनियों के लिए विदेशी बैंक खातों का नेटवर्क तैयार करने का आरोप है। इक्वाडोर में कोलंबिया की सीमा पर हुए एक बम धमाके में 3 सैनिकों की मौत हो गई है और 7 अन्य घायल हो गए हैं। इक्वाडोर का कहना है कि यह हमला कोलंबिया के विद्रोही गुट फार्क के पूर्व सदस्यों ने किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल राज्यसभा में बताया कि इराक में 2014 में लापता हुए 40 भारतीयों में से 39 मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि ये चरमपंथी संगठन ISIS के हाथों मारे गए। सुषमा ने कहा कि इराक के मुसल में लापता सभी 39 भारतीय अब जिंदा नहीं हैं। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत संदीप सोनी के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को चौथी बार राष्ट्रपति चुने जाने के लिए बधाई दी है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिटेन रूस के बीच जारी विवाद पर कुछ नहीं कहा। वहीं अमेरिकी कांग्रेस ट्रंप की आलोचना कर रही है क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिकी चुनाव में रूस की कथित दखलंदाजी पर भी पुतिन से बात करनी चाहिए थी। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए दिनेश उप्रेति से।
अब जब ये तय हो गया है कि व्लादिमीर पुतिन साल 2024 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे तो दुनिया के तमाम देश रूस से अपने संबंधों को नया आयाम देने में जुट गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पुतिन को उनके राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी और कहा कि भविष्य में बहुत जल्द वो पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। पुतिन ने राष्ट्रपति चुनाव में 76% से अधिक मत हासिल किए और चौथी बार 6 साल के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अमेरिका जानता है कि सैन्य ताकत के मामले में उसे मौजूदा हालात में चीन और रूस ही चुनौती दे सकते हैं। शायद यही वजह रही कि ट्रंप ने बधाई देते हुए पुतिन को बातों बातों में चेतावनी भी दे डाली कि अमेरिका और रूस के बीच हथियारों की दौड़ नाजुक मोड़ पर पहुंच गई है।
So that we can discuss arms, we can discuss the arms race. As you know, he made a statement that
ट्रंप कह रहे थे कि रूस और अमेरिका के बीच हथियारों की होड़ नियंत्रण से बाहर हो रही है, लेकिन हम किसी को भी अपने नजदीक नहीं आने दे सकते। हम अपनी सेना पर इस साल $700 अरब खर्च कर रहे हैं और हम दुनिया के किसी भी दूसरे देश से ताकतवर बने रहेंगे। अमेरिका जानता है कि पुतिन की इस जीत के क्या मायने हैं। पुतिन रूस में पहले से अधिक ताकतवर हुए हैं और कहने की जरूरत नहीं कि दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए वो हर उस राह में खड़े नजर आएंगे जहां अमेरिका आगे बढ़ने का इरादा रखता है। ऐसे में यूक्रेन, सीरिया और उत्तर कोरिया पर चल रही कूटनीतिक खींचतान और बढ़ने की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे थे कि जब वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे तो यूक्रेन, सीरिया और उत्तर कोरिया पर चर्चा करेंगे। ट्रंप ने अपने बयान को रूस और ब्रिटेन के बीच नर्व एजेंट को लेकर चल रहे राजनयिक टकराव से दूर रखा और इस पर एक भी शब्द नहीं बोले। हालांकि ट्रंप का पुतिन को बधाई देना अमरीकी सांसद जॉन मैकेन को कतई रास नहीं आया और उन्होंने इसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि रूस में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं और अमरीकी राष्ट्रपति को इन झूठे चुनाव जीतने वाले तानाशाह को बधाई नहीं देनी चाहिए थी।
अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप को ट्रंप ने फोन करके रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बधाई दी। रिपोर्ट सुना रहे थे दिनेश उप्रेती।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां भारत में कोई नई बात नहीं है। ऐसा ही एक मामला केरल में सामने आया है जहां कॉलेज में पढ़ाने वाले एक सहायक प्राध्यापक का कथित वीडियो वायरल हो गया है। इस वीडियो में सहायक प्राध्यापक महिलाओं के लिए काफी आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं। महिलाएं जाहिर तौर पर इसका विरोध कर रही हैं। इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी इमरान कुरैशी।
पिछले 2 दिनों से कोड़ीकोट के एक मशहूर कॉलेज फरूक ट्रेनिंग कॉलेज के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कारण ये है कि उन्हीं के एक असिस्टेंट प्रोफेसर का एक बेहुदा बयान का वीडियो वायरल हो गया है। छात्रों की मांग है कि असिस्टेंट प्रोफेसर को सस्पेंड किया जाए। वीडियो कितनी तारीख का है यह मालूम नहीं है, लेकिन उस वीडियो में जौहर मुनव्वर ये कह रहे हैं। महिलाएं पर्दा में रहती हैं, लेकिन वो उसे इस तरह पहनती हैं ताकि उनके लेगिंग्स दिखें। इसको स्टाइल कहा जाता है। सर पर स्कार्फ बांधते हैं लेकिन अपनी छाती खुली रखते हैं और ये वो हिस्सा है जो पुरुषों को आकर्षक लगता है। ये थे जौहर मुनव्वर के शब्द। वीडियो वायरल होते ही छात्र संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। केरला के डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी निखिल पी ने कहा,
दिस इज नॉट ओनली द इश्यू ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट्स, दिस इज एन कमेंट अगेंस्ट द टोटल गर्ल्स।
हमारा प्रदर्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मामला मुस्लिम छात्र के लिबास के बारे में है। केरला जैसे राज्य में इस तरह का बेहुदा बयान किसी महिला के खिलाफ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये थे निखिल पी के शब्द। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा शुरू हो गई है। दो महिला ने तरबूज के साथ फोटो शेयर की लेकिन फेसबुक ने इन्हें हटा दिया। उनमें से एक महिला आती ने बीबीसी को बताया, हाँ हमने हमारी तस्वीर इसलिए लगाई क्योंकि जब पुरुष कोई काम करता है तो किसी को कष्ट नहीं होता है, लेकिन एक महिला ने साड़ी ठीक तरीके से नहीं पहनी हो या उसकी ब्रा का स्ट्रैप थोड़ा भी दिखा रहा हो तो उस पर महिलाओं का अपमान किया जाता है। ये थे आरती के शब्द। सोशल मीडिया पर आरती और उनके साथी रेहाना फातिमा को भद्दे कमेंट का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके अलावा उनको बहुत समर्थन भी मिला है। कॉलेज के प्रिंसिपल और जौहर मुनव्वर से बात करने की बहुत कोशिश की गई लेकिन किसी ने फोन नहीं लिया। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
इधर दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लड़कियों के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ करने वाले प्रोफेसर अतुल जौहरी को गिरफ्तारी के बाद अदालत से जमानत मिल गई है। प्रोफेसर जौहरी ने इन आरोपों को गलत बताया है, जबकि टीचर्स एसोसिएशन ने मांग की है कि पूरे मामले की ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। दिल्ली से बीबीसी संवाददाता प्रज्ञा मानव की रिपोर्ट।
5 दिन से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद जेएनयू के प्रोफेसर अतुल जौहरी गिरफ्तार तो हुए लेकिन थोड़ी देर में जमानत पर रिहा भी हो गए। प्रोफेसर जौहरी मंगलवार की शाम 5 बजे दिल्ली के वसंत कुंज थाने पहुंचे, जहां से उन्हें गिरफ्तार करके पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया। पुलिस प्रवक्ता दीपेंद्र पाठक ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध किया था लेकिन अदालत ने प्रोफेसर जौहरी को इस शर्त पर जमानत दे दी कि वे न तो जांच में किसी तरह का अड़ंगा लगाएंगे न ही शिकायत करने वाली लड़कियों को डराने धमकाने की कोशिश करेंगे। जेएनयू की 8 छात्राओं ने प्रोफेसर जौहरी पर आरोप लगाया है कि वे क्लास और लैब में लड़कियों के शरीर पर भद्दी टिप्पणी करते हैं, उनसे गलत बातें करते हैं और उन्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल करके डराने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर जौहरी ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को खारिज कर दिया है। इससे पहले मंगलवार को कई महिला संगठनों ने पुलिस थाने का घेराव किया। प्रदर्शन में मौजूद आईसा की नेशनल प्रेसिडेंट सुचेता डे ने कहा कि प्रोफेसर जौहरी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही क्योंकि वे खास राजनीतिक पार्टी को पसंद करते हैं और जेएनयू के वाइस चांसलर के बेहद करीबी माने जाते हैं।
अब देखिए 5 दिन बीत गया है, जेएनयू के अंदर अब तक अगर जीएसकश हुआ होता तो सुओ मोटा एक्शन जीएसकश ले लिया होता, प्रोफेसर को रेस्ट्रेन ऑर्डर दे दिया गया होता और उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई होती और उनको वो लैब में नहीं जाते ताकि लड़कियां पढ़ाई लिखाई कर पाए। जब ये स्थिति नहीं है जेएनयू में तब लड़कियां वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में है।
जीएस कैश जेएनयू की यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने वाली वो कमेटी थी जिसे पिछले साल खत्म कर दिया गया। इसकी जगह इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी आईसीसी बनाई गई लेकिन छात्र छात्राओं के मन में आईसीसी को लेकर अब भी आशंकाएं हैं। जेएनयू की छात्रा और जीएस कैश की प्रतिनिधि स्वाति सिम्हा बताती हैं कि आईसीसी में भरोसा न करने के पीछे बहुत सी वजहें हैं।
एक बार ऐसा हुआ था, एक लड़की आकर के एक प्रोफेसर के खिलाफ एक कंप्लेंट एक एफआईआर दर्ज किया था और पुलिस वालों ने आईसीसी को वापस भेज दिया था ये कंप्लेंट, ये बोल करके कि तुम आईसीसी में देख लो ये कंप्लेंट। आईसीसी ने क्या किया, कंप्लेनेंट के नाम नंबर सब उसके दीवार के ऊपर चिपका करके बोला है कि तुम्हें यहां आना है डिपोजिशन करने। कोई भी ऐसे कंप्लेनेंट को थ्रेटन करता है आकर के डिपोजिशन देने के लिए।
जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन भी छात्राओं के साथ खड़ा नजर आता है। टीचर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुधीर कुमार ने कहा कि सच तभी सामने आएगा जब मामले की ईमानदारी से जांच की जाए।
काफी संगीन आरोप हैं। टीचर एसोसिएशन का ये डिमांड है कि उसके ऊपर एक फेयर इंक्वायरी होना चाहिए और जिन लोगों ने शिकायत की है उनकी सुरक्षा और उनकी बोलने की आज़ादी इन दोनों का ध्यान रखते हुए ये इंश्योर किया जाए कि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं हो और उसके बाद इंक्वायरी के बाद जो भी सामने आए उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए।
प्रोफेसर अतुल जौहरी जेएनयू के स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज में माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाते हैं। उनके खिलाफ शिकायत करने वाली 8 लड़कियों में से 6 लड़कियां फिलहाल रिसर्च स्कॉलर हैं। एक उनकी पूर्व छात्रा है और 8वीं लड़की का कहना है कि उसने प्रोफेसर जौहरी के रवैये से परेशान होकर उनके साथ रिसर्च छोड़ दी। प्रज्ञा मानव, बीबीसी दिल्ली।
मर्द के कोई चीज होवे ना तो तुरंत धक जाता है, औरत में कहाँ आदमी आता है, कहाँ कोई सुनवाई है।
बीबीसी शी, हम निकले हैं औरतों की बात सुनने, उनके मुद्दे उनके सरोकार जानने। मैं दिव्या आर्य जाऊंगी पटना से विशाखापट्टनम, कोयम्बटूर से नागपुर, राजकोट और जालंधर, और सुनाऊंगी वो आवाजें जो आप तक नहीं पहुंचती। सुनिएगा बीबीसी हिंदी रेडियो पर दिन भर और नमस्कार भारत में हमारी विशेष पेशकश बीबीसी शी।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। भारतीय सेना ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में चरमपंथियों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें कम से कम 4 चरमपंथी मारे गए हैं। इस खबर पर और जानकारी के साथ श्रीनगर से माजिद जहांगीर।
राजधानी श्रीनगर से करीब 90 किलोमीटर दूर उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हलमतपोरा के जंगलों में सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच मंगलवार शाम से झड़प जारी है। पुलिस का कहना है कि यह झड़प उस समय शुरू हुई जब जंगल में छुपे चरमपंथियों ने सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष दस्ते पर गोलियां चलाई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और झड़प शुरू हुई। श्रीनगर में सेना के प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि अभी तक इस ऑपरेशन में 4 चरमपंथी मारे गए हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चरमपंथियों के खिलाफ ऑपरेशन अभी तक जारी है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि यह अभी नहीं कहा जा सकता है कि मारे गए चरमपंथियों के शव बरामद हुए भी हैं या नहीं। झड़प शुरू होने के बाद सुरक्षा बलों की मजीद टुकड़ियां मुठभेड़ स्थल पर रवाना की गई हैं और चारों तरफ से इलाके को घेर लिया गया है। उत्तरी कश्मीर में हालांकि चरमपंथ का बहुत ज्यादा दबदबा तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद चरमपंथी कभी कभार सुरक्षा बलों पर हमले करके क्षेत्र में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं। कश्मीर घाटी में इस समय चरमपंथ का सबसे बड़ा गढ़ दक्षिणी कश्मीर माना जाता है। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में पुलिस ने ऑपरेशन ऑल आउट में 200 से ज्यादा चरमपंथियों को मुठभेड़ों के दौरान मारने का दावा किया था। पुलिस ने इस बात का भी दावा किया था कि मारे गए चरमपंथियों में कई टॉप कमांडर भी शामिल थे। वर्ष 2017 में दक्षिणी कश्मीर में सबसे ज्यादा चरमपंथी मुठभेड़ों के दौरान मारे गए थे। पुलिस ने यह भी दावा किया था कि मारे गए चरमपंथियों में दर्जनों चरमपंथी विदेशी मूल के थे। माजिद जहांगीर, बीबीसी श्रीनगर।
और एक बार फिर दक्षिण भारत का रुख कर रहे हैं। उत्तर भारत में अयोध्या से शुरू हुई रामराज्य रथ यात्रा लंबा सफर तय करके तमिलनाडु पहुंच गई है, लेकिन तमिलनाडु में इस रथ यात्रा का वैसा स्वागत नहीं हुआ जैसे रास्ते में पड़ने वाले अन्य राज्यों में हुआ। रथ यात्रा को लेकर तमिलनाडु में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। मेरे सहयोगी मोहम्मद शाहिद ने तमिलनाडु में वरिष्ठ पत्रकार डी सुरेश कुमार से बात की और इस तनाव की वजह को समझने की कोशिश की।
पहले यहाँ का जो IUML के जो MLA है, उन्होंने इसका पहला उन्होंने अपोजिशन दिया यहाँ पे। उन्होंने बोला कि राम राज्य का यात्रा यहाँ पे नहीं हो सकता है करके। तो उसके बाद क्या क्या जो प्रधान अपोजिशन पार्टी जो है DMK, उनका उनके जो लीडर है, नेता है स्टालिन जी, उन्होंने इसको बहुत बड़ा रूप में ले गया। तो उन्होंने बोला कि जब ये राम राज्य का जो ये जो मामला है, जब ये सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या का मामला अभी भी पेंडिंग है, तो इस समय आप यहाँ पे रथ यात्रा को आप अलाउ नहीं कर सकते, यहाँ पे छोड़ना सही नहीं रहेगा। तो उन्होंने कल बहुत जोर से इसका आवाज दिया, इसके खिलाफ आवाज दिया था। तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी और बाकी जो छोटे छोटे पार्टी है यहाँ पे, सब एक मिल के इसका विरोध कर रहे हैं। ये एक तरफ पॉलिटिकल अपोजिशन चल रहा था, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने क्या किया है, वो तिरुनेलवेली यानी कि जो साउथ तमिलनाडु में है, हमारे दक्षिण तमिलनाडु में जो है, वहां पे ये रात यात्रा आने वाला था, तो वहां के कलेक्टर ने सेक्शन 144 डाल दिया है, यानी कि वो प्रोहिबिटरी ऑर्डर जो बोलते हैं वो डाल दिया वहां पे। तो इसके वजह से और भी विरोध हुआ है यहाँ पे। वो लोग पूछ रहे हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि 144 डाल दिया, और 144 सिर्फ जो लोग इसका विरोध करते हैं उनके लिए अप्लाई होगा, लेकिन जो रथ यात्रा को अंदर ला रहे हैं उनका उनको तो आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं।
तो अभी हालिया स्थिति क्या है, रथ यात्रा कहाँ तक पहुँची है?
प्रोटेस्ट तो अभी भी चल रहा है ज्यादा। अभी ये यात्रा तो तिरुनेलवेली में आया, और तिरुनेलवेली के बाद ये गया विरुधुनगर के लिए। विरुधुनगर भी साउथ तमिलनाडु में है, वहां भी गया और 6:30 बजे मदुरई आ गया, और वो राम सेतु वगैरह है वहां पे, वो जैसा माना जाता है कि वहां पे राम सेतु है, तो वहां जा रहे हैं।
अगर हम देखें राम मंदिर जो आंदोलन पूरा रहा उत्तर भारत में, उसके मुकाबले अगर दक्षिण भारत को देखें, तमिलनाडु पे देखें, तो वहां किस तरीके का ये आंदोलन रहा है?
1992 में भी जब बाबरी मस्जिद का जो डेमोलिशन हुआ था, तब भी आप तमिलनाडु में देखें तो एकदम शांति शांति था यहाँ पे तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में ये जो रिलीजियस डिस्कोर्स है वो बहुत ज्यादा उसका जो पेनिट्रेशन ज्यादा नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु में आप देखें तो पिछले 60-70 साल से जो सोशल जस्टिस का मूवमेंट जो चल रहा है, जो कि यानी कि द्राविड़ा कलम के फाउंडर पेरियार जो थे वो इन रिलीजियस कम्युनल डिवाइड के खिलाफ थे, तो उसकी वजह से यहाँ पे तमिलनाडु में जो कम्युनल डिवीजन है वो तो कम है। सिर्फ एक ही बार यहाँ पे बहुत बड़ा कांड जैसे हुआ वो तो 1998 में था, जब एक ग्रुप ऑफ इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट यानी कि अल्लुमा करके एक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, तो उन्होंने 1998 इलेक्शन के समय जब एल के अद्वानी तब के बीजेपी नेता जब वो कोयम्बतूर को कैंपेन करने के लिए आए तब बम विस्फोट हुआ, बहुत बड़ा सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, लेकिन अद्वानी उसमें बच गए। तो वो एक मेजर कम्युनल रायट था तमिलनाडु में आप देखेंगे तो उसके बाद जो देखा है तमिलनाडु में तो कास्ट क्लैशेस हुए, यानी कि जाति रीति तो क्लैशेस यहाँ पे हुए, लेकिन हिंदू मुसलमान या हिंदू क्रिश्चियन ऐसा कोई डिवाइड नहीं है तमिलनाडु में।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार डी सुरेश, जो तमिलनाडु में रामराज्य रथ यात्रा के विरोध की वजह बता रहे थे। कार्यक्रम में आगे चर्चा होगी कड़कनाथ मुर्गे की, जिस पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं। लेकिन पहले सुनते हैं दिल्ली से छपने वाले आज के अखबार क्या बयां कर रहे हैं। दिनेश उप्रेती मेरे सहयोगी, उनके हाथ में कई अखबार हैं जिन्हें वो अब से कुछ देर पहले तक बड़ी बारीकी से देख रहे थे।
जी संदीप जी, इराक में लापता भारतीय नागरिकों पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बयान को लगभग सभी अखबारों ने अपनी पहली खबर बनाया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मोदी सरकार ने पिछले दो साल में कम से कम 6 बार बयान दिया था कि 39 लापता भारतीय जिंदा और सुरक्षित हैं। इन लापता भारतीयों को चरमपंथी संगठन ISIS द्वारा अपहृत किए जाने की खबर मोदी सरकार के मई 2014 में सत्ता में आने के कुछ ही हफ्तों बाद आई थी। अखबार ने सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि कब कब सरकार की तरफ से इन नागरिकों के बारे में जानकारी दी गई। अखबार ने इस खबर पर मारे गए लोगों के परिजनों की प्रतिक्रिया भी प्रकाशित की है। मारे गए मनजिंदर सिंह की बहन गुरपिंदर कौर ने सरकार से सवाल पूछा है कि उन्हें इतने लंबे समय तक अंधेरे में क्यों रखा गया, उन्हें इसके बारे में सबसे पहले क्यों नहीं बताया गया और उन्हें यह सूचना टीवी के माध्यम से क्यों मिली। दैनिक भास्कर ने इस मामले में विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह का लेख प्रकाशित किया है, जिसमें वीके सिंह ने लिखा है कि 9 जुलाई को जब मूसल कथित इस्लामिक स्टेट के कब्जे से आज़ाद हुआ तो अगले ही दिन वो 10 जुलाई को वहां के लिए निकल गए थे और लोगों को लापता भारतीयों की तस्वीरें दिखाकर पूछते कि कोई हिंदुस्तानी इधर आया है क्या। मोदी सरकार ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक स्टेटस का दर्जा देने का विरोध किया है।
जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है।
इंडियन एक्सप्रेस में छपी इस खबर के मुताबिक सरकार ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में 5 मार्च को नया हलफनामा दायर किया है।
इसके दर्जे को लेकर काफी विवाद होता रहा, आपको ध्यान होगा
जी। और इसमें सरकार का जो तर्क है वो ये है कि इस संस्थान को संसद के कानून के तहत बनाया गया है और केंद्र से इसे आर्थिक मदद भी मिलती है, इसलिए इसे माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। टीवी के मरीज की जानकारी नहीं देने वाले डॉक्टरों और केमिस्ट को हो सकती है जेल, ये सुर्खी है इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया है कि अगर नोडल अधिकारी को इस बारे में सूचित नहीं किया गया तो 6 महीने तक की जेल हो सकती है। एक और बड़ी खबर है SC ST एक्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि SC ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। इस खबर को दैनिक भास्कर, इंडियन एक्सप्रेस समेत कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गाइडलाइन जारी की है और अब SC ST एक्ट के तहत FIR दर्ज होने के बाद आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी।
ये जहां तक मैंने पढ़ा और समझा है दिनेश जी, ये सरकारी अधिकारियों की फौरन गिरफ्तारी के संबंध में है, आम लोगों के संबंध में नहीं है।
जी, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि क्योंकि वहां इस मामले का ज्यादा दुरुपयोग देखने को मिला है। केजरीवाल को माफी के मूड में नहीं है जेटली, ये खबर छापी है अमर उजाला ने। अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि केजरीवाल ने अपने राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता को जेटली का मन टटोलने के लिए भेजा था, लेकिन जेटली ने गुप्ता से कहा कि वो तभी माफी स्वीकार करेंगे जब आपके वो सभी नेता माफी मांगेंगे जिनके खिलाफ उन्होंने मानहानि का मुकदमा किया।
यानी ये माफी वाला मामला अभी और आगे खींचना बाकी है
जी, खासतौर पर नहीं आ रहा है
अरुण जेटली और अरविंद केजरीवाल के बीच। बहुत शुक्रिया दिनेश जी। चलिए श्रोताओं, अब कड़कनाथ मुर्गे वाली बात को आगे बढ़ाते हैं। कई खूबियों वाली मुर्गे की ये प्रजाति दो राज्यों के बीच तनातनी की वजह बनी हुई है। मध्य प्रदेश कहता है कि ये प्रजाति मूल रूप से हमारी है और यही दावा छत्तीसगढ़ भी करता है। अब जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग तय करेगा कड़कनाथ किसका है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली काले रंग के मुर्गे की कड़कनाथ नामक इस प्रजाति का खून और मांस तक काला ही होता है। देश में पाए जाने वाले दूसरे मुर्गों की तुलना में इसका आकार और वजन तो बड़ा होता ही है। इस मुर्गे में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व भी दूसरे मुर्गों की तुलना में कहीं अधिक होते हैं। आमतौर पर 80 से 120 रुपए किलो बिकने वाले दूसरे मुर्गों की तुलना में कड़कनाथ का बाजार भाव 500 से 750 रुपए प्रति किलोग्राम है। इतनी सारी खूबियों वाले कड़कनाथ के जियोग्राफिकल इंडिक्शन टैग यानी भौगोलिक संकेतक का दावा करते हुए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों ने चेन्नई के भौगोलिक संकेतक पंजीयन कार्यालय में अपना आवेदन पेश किया है। जियोग्राफिकल इंडिक्शन टैग का मतलब यह है कि अधिकृत उपयोगकर्ता के अलावा कोई भी व्यक्ति, संस्था या सरकार इस उत्पाद के मशहूर नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। मध्य प्रदेश की ओर से 2012 में ही चेन्नई के भौगोलिक संकेतक पंजीयन कार्यालय में अपना आवेदन पेश करने वाली झाबुआ की गैर सरकारी संस्था ग्रामीण विकास ट्रस्ट की फौजिया करीम कहती हैं,
2012 में हम लोगों ने फीस पेमेंट किया, उसके बाद बहुत प्रोसीजर बहुत लंबा है, नीट एनालिसिस हुआ, फिर यहाँ से वर्कशॉप और सारे डॉक्यूमेंट हिस्टोरिकल एविडेंस, तो वो सब टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहे। आई थिंक मार्च के लास्ट तक हमें मिल जाना चाहिए। मीट का पहला रजिस्ट्रेशन है इंडिया का, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है और प्रोसेस चल रहा है, या ग्रामीण विकास ट्रस्ट को भी मिलेगा।
छत्तीसगढ़ में सरकार ने गांव-गांव में किसानों को कड़कनाथ को पालने के लिए लाखों रुपयों का ऋण भी दिया है, जिसमें 90% तक की रकम सब्सिडी के बतौर दी जा रही है। राज्य के कृषि मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल कड़कनाथ के गुण बताते नहीं थकते।
कड़कनाथ प्रोटीन की दृष्टि से और सबसे ज्यादा आयरन उसमें है। वनवासी आदिवासी क्षेत्रों में पोषक तत्वों की कमी होती है, वो उससे दूर की जा सकती है और इन मुर्गों के माध्यम से किसान और वनवासी अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं।
छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारियों का दावा है कि कड़कनाथ पिछले कई सालों से छत्तीसगढ़ में पाला जाता रहा है, लेकिन इसके उलट मध्य प्रदेश के झाबुआ में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर आईएस तोमर का दावा है कि छत्तीसगढ़ के अधिकारी कुछ साल पहले उनके ही केंद्र से कड़कनाथ के चूजे छत्तीसगढ़ लेकर गए थे।
अभी पूरे देश में मुझे लगता है झाबुआ से कम 40 से 50,000 बच्चे हम लोग यहाँ प्रतिवर्ष पहुँचा रहे हैं। पिछले करीब 4 से 5 साल पहले छत्तीसगढ़ में जो कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर है, वो यहीं से करीब 1,000 चूजे लेके गए हैं।
लेकिन छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सरकार के साथ मिलकर कड़कनाथ का व्यापार करने वाली ग्लोबल बिजनेस इंक्यूबेटर प्राइवेट लिमिटेड को इन दावों की कोई परवाह नहीं है। पिछले महीने ही दंतेवाड़ा जिला प्रशासन और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फिक्की के साथ मिलकर इस कंपनी ने कड़कनाथ पर छत्तीसगढ़ का दावा पेश करते हुए जियोग्राफिकल इंडिक्शन टैग के लिए आवेदन किया है। कंपनी के निदेशक श्रीनिवास गोगी नेनी अपने दावों को लेकर आश्वस्त हैं।
वो मैटर जो दिए टैग रिव्यू करता है, जो एविडेंशियल डॉक्यूमेंट है हम सबमिट किया है, वो अपना एविडेंशियल डॉक्यूमेंट सबमिट किया है।
माना जा रहा है कि चेन्नई का भौगोलिक संकेतक पंजीयन कार्यालय जल्दी ही इस मामले में छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश को कड़कनाथ का जियोग्राफिकल इंडिक्शन टैग जारी कर सकता है। जाहिर है ऐसा हुआ तो जिस राज्य को टैग नहीं मिलेगा वहां कड़कनाथ की बांग मुश्किल में पड़ सकती है। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
और इसके साथ ही वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को उनके रूस का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में बहुत जल्द वो पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। ब्रिटेन की कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी अलेक्जेंडर निक्स को निलंबित कर दिया है। फेसबुक ने कहा है कि यूजर्स से निजी जानकारियां चुराए जाने को लेकर उनके प्रतिनिधि आज अमेरिकी संसद में इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे देवाशीष कुमार और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया अभिमन्यु साह ने। अगला प्रसारण दिन भर शाम 7:30 बजे, तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।